हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माया ददाति स्वपदान्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटी शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिभे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। ब्रजीवसन्तं नवनीतशोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यकर्ण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्लोक संख्या 35 एंड 36। कृपया इन अत्यंत ही परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदि कुलं बोधा वाद्योनन्त सखः पुमान् यत्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां
यदवोषिता क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ति यदि कुलं बोधा वाद्योऽनन्त सखः पुमान् यत्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोषिता क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ति यदि कुलं बोधा वाद्योऽनन्त सखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोषिता क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव. शब्दार्थ मंगलाय च लोकानां. मंगलाय मतलब कल्याण के लिए, च मना भी, और लोकानां यानी समस्त लोकों के, जितने भी लोक हैं उनके कल्याण के लिए, और क्षेमाय च भवाय च, क्षेमा मतलब सुरक्षा के लिए और भवाय च मतलब उनकी उन्नति के लिए. च आस्ते यदि कुलं बोधा, आस्ते मतलब है, यदु कुलं मतलब यदुकुल, यदुओं का जो कुल है उनका अम्बोध, अम्बोध मतलब उसके सागर में, बहुत सारे यदुवंशी हैं उनके सागर में वो हैं. और आद्यंत, आद्यंत अनंत सख, अनंत सख कहते हैं जो अनंत संकर्षण है बलराम जी, उसको कहते हैं अनंत. और पुमान यानी परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण. यत बाहुदंड गुप्तायाम, यत मतलब जिसको, और बाहुदंड गुप्तायाम मतलब उनके बाहुओं से सुरक्षित, सपुर्याम अपनी नगरी में, पूरी कहते हैं नगरी और स्व मन अपनी. यदवोर्षिता, यद मतलब यदुवंशी के सदस्य, अर्षिता मतलब योग्यता के अनुसार, और क्रीडन्ति परमानंदम, क्रीडन्ति मतलब आनंद लूट रहे हैं, परम आनंदम मतलब दिव्य आनंद, और महापौरुषिका इव, महापौरुष मतलब जो वैकुंठ के वासी होते हैं, जो वास्तव में महापुरुष हैं. महापुरुष आम पुरुष होते हैं, वो भौतिक आनंद लूटने का लूटने के लिए भौतिक जीवों की सेवा करते हैं, लेकिन महापौरुष जो वैकुंठ के वासी होते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, अपने पुरुषत्व का वास्तविक लाभ उठा रहे हैं, सदृश इव यानी सदृश. अनुवाद देखिए, परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सारे यदुवंशी भगवान की पूजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठवासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास कर रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में. क्षीरोदक्षाय विष्णु का अपना एक लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर, और क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं. इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है, और श्री बलराम की अनंत से तुलना की है जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं. उन्होंने द्वारिका के निवासियों की तुलना वैकुंठ के मुक्त निवासियों से की है. भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सब तावरों से के भी आगे कारणव है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं. इस कारणों के आगे वैकुंठ का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ लोक इस जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य वासी हैं, जो भगवान विष्णु के जैसे ही दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन लोकों में सुखी हैं और उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता, और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं, पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा रोग तथा कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारिका वासियों की तुलना वैकुंठ के महापौरुषकों से की है, क्योंकि भगवान के साथ परम प्रसन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार निर्देश हुआ है और वहां के वेदाम पर मद धाम के रूप में अर्थात भगवान के रूप में वर्णित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज युधिष्ठिर महाराज भगवान और भगवान के जो लोक हैं उनके विषय में कह रहे हैं, और जहाँ भगवान रह रहे हैं अभी द्वारिकापुरी, उसको वे वैकुंठपुरी के वैकुंठ से उनकी तुलना कर रहे हैं, और वो किस तरह कर रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदि कुलां बोधा वाद्योनंत सख पुमान। यानी कि वो भगवान आस्ते, आस्ते मतलब रह रहे हैं कहाँ पर, यदु कुलाम भोदा, यदुवंश के समुद्र में। यानी कि यदुवंश बहुत विशाल है, जैसे हमने पढ़ा, तो इतने बड़े विशाल यदुवंश के समुद्र में भगवान किसके साथ रहे, अनंत सख। अनंत सख यानी बलराम जी के साथ सख जो रहते हैं। पुमान यानी वो भगवान जो परम पुरुष हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के समुद्र में शेषनाग बलराम जी की शैया पर रह रहे हैं। यानी और वो क्यों रह रहे हैं, उनके रहने का कारण बताइए, तो कहते हैं मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो समस्त जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, समस्त लोकों का कल्याण करना चाहते हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, सबकी उन्नति करना चाहते हैं। भगवान के भौतिक जगत में आने का कारण ये है कि जीव मात्र का कल्याण हो। जब भगवान इस भौतिक जगत में होते हैं तो वो अपने सानिध्य से कल्याण करते हैं, और जब अपनी लीला को समेट कर चले जाते हैं तो उनकी लीलाओं को श्रवण करके कल्याण होता है। अर्थात भगवान का प्रत्येक कार्य जो है वो जीवों के कल्याण के लिए होता है। जैसे इस भौतिक जगत में क्या होता है, अगर हम बहुत ही सुंदर रेसिपी होती है किसी मिठाई की, है ना, कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन हो, रसगुल्ले की रेसिपी आप पढ़ो, इतना अच्छी तरीके से कोई बताए, रसगुल्ले को बनाने का तरीका बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जा रहा है और आप उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन सुनते 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 कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको रसगुल्ले का टेस्ट फील हो। कभी ऐसा होता है कि आप सुन रहे हो और आपको ऐसा लगे कि मैंने रसगुल्ला खाया है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो भौतिक जो श्रवण होता है किसी भी वस्तु का, उसमें वो शक्ति नहीं है कि आपको वो आनंद प्रदान कर सके जो वास्तविक वस्तु में है। परंतु भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भागवत महापुराण है, जिसमें भगवान की शुद्ध लीलाएं लिखी हुई हैं, उसको जब हम श्रवण करते हैं केवल श्रवण मात्र से और कुछ नहीं, केवल श्रवण मात्र से भगवान का सानिध्य, मतलब अगर कोई शुद्ध भक्त हमें सुनाता है तो हमें ऐसा लगना लग जाता है, मतलब शुद्ध भक्तों के श्रवण करने से हमें ऐसा लगता है कि हम भी उसी लीला में भगवान के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में भागवतम को केवल श्रवण करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो ये बता रहे हैं कि अभी तो भगवान यहाँ भौतिक जगत में यदुकुल में है और वो अनंत बलराम जी के साथ समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको उनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर है, लेकिन वास्तव में भगवान के होने का कारण यही है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। कि भगवान के, भगवान का होना और भगवान के शब्दों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के विषय में श्रवण, उस संपूर्ण कार्य से जीवों का लोक मंगलाय से लोकानाम क्षेमाय च भवायत, उनकी सुरक्षा होती है, उनकी उन्नति होती है, उनका कल्याण होता है केवल भगवान के सानिध्य से। चाहे वो भगवान साक्षात हो या भगवान की कथाएं हो, तो उन सबका कारण क्या है, उन सबका कारण है जीवों का कल्याण। और आगे कहते हैं वही भगवान यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यद अवोर्चिता, यद बाहुदंड गुप्ताना, मतलब ऐसे भगवान जिनका होना जीवों का कल्याण का चिन्ह है, वो बाहुदंड गुप्तायाम उनके बाहुओं से सुरक्षित होकर स्वपुर्याम, यानी वो उनकी अपनी नगरी है द्वारिका जो उनकी भुजाओं से सुरक्षित है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज द्वारिका की महिमा बता रहे हैं, स्वपुर्याम ऐसे भगवान जो जीवों का कल्याण करते हैं, जिनके होने से समस्त जीवों की सुरक्षा निर्धारित करती है और जिनके होने से समस्त जीवों की उन्नति होती है, ऐसे भगवान स्वपुर्याम यदवोर्षुता यदुवंशों के सदस्यों ओर्षता, यानी योग्यता के अनुसार अभी सारे यदुवंशी वहाँ पर हैं और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्रीडंती परमानंदम, क्रीडंती आनंद लूट रहे हैं। क्या उन यदुवंशियों के सौभाग्य की बात की जाए कि वो भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं, उनको वास्तव में यदुवंशियों से ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है जिस साक्षात भगवान उनके साथ रहते हैं, उनका दर्शन कितना आसान है। भगवान अभी भगवान रह रहे हैं उस यदुवंश द्वारिकापुरी में, तो जाहिर सी बात है सब लोग है ना गैलरी में जाते होंगे, कभी कभी भगवान उधर से गुजर रहे होंगे कभी कभी, और भगवान का महल इतना विशाल है, उसमें बहुत सारे बालकनीज हैं, कभी भगवान किसी बालकनी में आते होंगे और सबको दर्शन होते होंगे भगवान के सुंदर मुखारविंद के, तो कभी भगवान कहीं से कुछ लाने के लिए मार्केट से जा रहे होंगे, मतलब भगवान वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब जैसे रहते हैं तो उसके साथ तो सानिध्य कितना इजी हो जाता है ना, उसको आसानी से उसको उसके दर्शन। तो ये द्वारिका वासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ द्वारिका में भगवान उनके साथ रहते हैं। मतलब कोई भी साधारण द्वारिका वासी को ऐसे मतलब मना नहीं है कि वहाँ से वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मतलब वो कहीं से भी कभी भी पॉसिबल है। हमारे साथ अगर कोई रहता है हमारी कंट्री में या हमारे शहर में रहता है तो फिर कभी भी संभव है ना कि उसके दर्शन हो जाएंगे। तो ये उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान महल से निकलते होंगे और कितने लोग उनको दर्शन कर सकते होंगे, वरना तो साधारणतया कितने कितने जन्मों तक योगियों को तपस्या करनी पड़ती है भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और ये भगवान साक्षात द्वारिका वासियों के साथ रह रहे हैं। और ये द्वारिकापुरी कैसी है, यद बाहुदंड गुप्तायाम, ये उनकी बाहों के द्वारा सुरक्षित है। वो भगवान जो संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा करते हैं, वो भगवान उस द्वारिका में रहते हैं। और तो जाहिर सी बात है, उसकी सुरक्षा भगवान की जिम्मेदारी है, तो वो सब कितना आनंद से रहते होंगे, जिसकी सुरक्षा भगवान स्वयं, उसका दायित्व है। भगवान द्वारिकाधीश है, तो द्वारिकाधीश की का दायित्व है कि जितने भी द्वारिका वासी हैं उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो इसलिए कहा क्रीडंती परम आनंदम, क्रीडंती, वो तो उनके लिए तो कोई दुख की बात ही नहीं है, और वो सदैव दिव्य आनंद लुट रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान उनको सुरक्षा, गोविंद बाहु दंड गुप्तायाम, या फिर यद बाहु दंड गुप्तायाम, के उनकी बाहों के द्वारा सुरक्षित है। तो उनकी आनंद की क्या बात, क्रीडंती परम आनंदम। और इसलिए वो कोई साधारण नहीं है, महापौरुषिका इव, वो तो वैकुंठ के वासियों की तरह है, वो तो सदैव आनंद में। अब देखो यहाँ पर महापौरुषिका का मतलब पता है कि जो वैकुंठ के वासी हैं, मतलब ये भौतिक जगत जो है वो कुंठ है, सकुंठ कहा जाता है इसको, और वैकुंठ जगत को वै, यानी कि जहाँ पर कोई कुंठ नहीं, कुंठ का मतलब होता है दुख कष्ट। तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज यहाँ पर बहुत ही सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का जो धाम है, जिसको यहाँ पर वैकुंठ कहा गया है, वो भी भगवान का धाम है, और वो कहाँ पर है, जहाँ पर यह हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे बहुत परे, यानी कि हमारी आंखों तक एक आकाश आता है और उसके बाद हमें नजर नहीं आता, तो उससे बहुत परे आगे, और उसके बाद कहा ब्रह्मांड के सप्त आवरणों से भी आगे। सप्त आवरण कौन से हैं, जैसे ये हमारा भूलोक है, उसके बाद भूलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, ये सात जो ऊपर के लोक हैं, उनसे भी आगे कारण है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं, कारण व समुद्र, जिसमें कारण दक्षाई विष्णु श्वास ले रहे हैं, और उनकी श्वास से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और वो ब्रह्मांड जो है वो कारण व जल में गेंद की तरह, वो कितना विशाल विष्णु है और कितनी विशाल वो समुद्र है, जिसमें एक ब्रह्मांड जो है वो गेंद की जैसा लगता है, तो करोड़ वहां पर ब्रह्मांड हैं। और इस कारणों के आगे, अब वो वहां तक हमारा भौतिक जगत खत्म हो जाता है, और उसके आगे आगे क्या है, वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसमें सामान्यता जिसको ब्रह्म ज्योति का, अभी देखो ये भौतिक जगत है, उसके बाद आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, और आध्यात्मिक जगत शुरू होता है सबसे पहले ब्रह्म ज्योति से, पूरा आध्यात्मिक जो एरिया है वो ब्रह्म ज्योति से भरा हुआ है, उसमें ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति आती तो गौलोक वृंदावन धाम से है, जैसे सूर्य का पूरा प्रकाश पूरे संसार में फैला होता है, लेकिन सूर्य तो ऊपर होता है ना, उसी तरह ब्रह्म ज्योति जो है पूरे आध्यात्मिक एरिया में फैली हुई है, और उसमें यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहा जाता है, इस तेज में असंख्य वैकुंठ है। अब यहाँ हमें ये समझना है, वैकुंठ एक नहीं है, वैकुंठ बहुत सारे, असंख्य वैकुंठ हैं। इस जो भौतिक जगत के आगे जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें बहुत सारे वैकुंठ हैं, यानी कि हर जीव को एक सी मुक्ति नहीं मिलती है। आप अगर श्री राम की भक्ति करते हो तो आप साकेत धाम में जाते हो, अगर आप नरसिम्हा भगवान की भक्ति करते हो तो आप उसी के स्वरूप में जो उनका वैकुंठ लोक है उसी में जाते हो, यदि आप वराह भगवान के भक्त हो, मतलब जिस रूप की आप भक्ति करोगे उसी रूप के अनुगत आपको वैकुंठ मिलेगा, आपको वहां पर उसी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार भगवान ने बहुत सारे वैकुंठ बनाए। वैसे तो जीव इस भौतिक जगत में घूमता फिरता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, लेकिन जब वो आगे जाता है तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उस ब्रह्म तेज में असंख्य वैकुंठ हैं, और इनमें से प्रत्येक वैकुंठ इस जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य व्यासी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस भौतिक जगत में कितने सारे प्राणी हैं, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं तो वैकुंठ तो सारे खाली होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे वैकुंठ में बहुत सारे प्राणी हैं। वहां पर यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक में असंख्य निवासी हैं। इस भौतिक जगत में 25% जीव हैं और वैकुंठ लोक में 75% जीव हैं। तो 25% जीव, देखो हमें लगता है कि कितना बड़ा ये भौतिक जगत है, केवल पृथ्वी लोक हम लोग को लग रहा है। दूसरे तो इस भौतिक जगत में 14 लोक हैं, उसमें भी कितने सारे प्राणी हैं उनको तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन केवल पृथ्वी भी हमको कितना ज्यादा लगता है कि इसमें इतने सारे प्राणी हैं, लेकिन उसके अंदर प्रत्येक में असंख्य वासी हैं। जितने भी बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, असंख्य हैं, वो भी कोई क्वांटिटी भी नहीं बताई कि भाई 10 हैं या 12 हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं और उसमें भी बहुत सारे प्राणी हैं जो भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं, उनको सारूप्य मिलके, मतलब जितने भी वैकुंठ में जीव जाते हैं वो सब भगवान के जैसा स्वरूप धारण कर देते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं। महापौरुषिक यानी ऐसे पुरुष जो सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब भौतिक जगत में जितने भी जीव होंगे वो कहाँ पर किसकी सेवा करेंगे? वो या तो अपनी सेवा करेंगे या फिर अपने से बड़े जीव की सेवा करेंगे, है ना, डायरेक्ट से भगवान की सेवा नहीं। भले हम चाहें भी हम भौतिक जगत में आकर केवल भगवान की सेवा करके नहीं जी सकते हैं, मतलब भौतिक स्तर पर हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना, जब तक हम जी रहे हैं, कोई माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, बच्चे संतान का कर्तव्य और नहीं तो अपने शरीर का कर्तव्य, तो ये सब हमें भौतिक जगत में हमें भौतिक जीवों की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन महापौरुषिक वो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहां पर उनका अपना कोई नहीं होता, उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उनका केवल एक ही कर्तव्य होता है कि वो भगवान की सेवा करें। सीधे भगवान के साथ उनका संपर्क होता है और ना उनका अपना कोई भौतिक शरीर होता है जिसको उसको खिलाने की परेशानी हो, जिसको उसको साफ करने की या फिर ना उसके लिए न्यू ड्रेस बनाने की या फिर और कोई आहार निद्रा बही मैथुन या फिर कोई भी भौतिक वस्तु की कोई उसको आवश्यकता नहीं होती। तो शरीर के लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसका कोई पति नहीं होता तो उसकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कोई पत्नी नहीं होती तो उसके लिए भी मार्केट से जाकर सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही उसका कोई संतान होता है जिसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको उठानी पड़े। वैकुंठ में जितने भी जीव हैं वो महापौरुषिक हैं, अर्थात वो सीधे भगवान की सेवा में। जीव का वास्तविक स्वरूप है जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, और वो वैकुंठ में जाकर हमको वो आनंद प्राप्त होता है। उस सेवा में कोई भी डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता क्योंकि आपका संबंध केवल भगवान के साथ है, तो दूसरा कोई संबंध है ही नहीं तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो वे उन लोकों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। अब जीव क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। और भगवान क्या करता है? क्षेमाय च भवाय च, जो यहाँ पर हमारे श्लोक में बताया कि उनको सुरक्षा करता है और उनको आनंद देता है। क्रीडंती, वो उनको आनंद देता है, परम आनंद। उस भौतिक जगत, उस आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में भगवान का कार्य क्या है? अपने दास को सुख देना। और जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। बस यही चल रहा होता है और वो सदैव सुखी रहते हैं और वे सदैव तरुण बने रहते हैं, पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं और वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा है वैकुंठ धाम। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया है? द्वारिका वासियों की तुलना वैकुंठ के महापुरुषों से की है क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। द्वारिका के वासियों का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान का काम क्या है? क्षेमाय च भवाय च, है ना, यद बाहुदंड गुप्तायाम, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जो वैकुंठ द्वारिका वासी हैं उनके विषय में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदवंश रूपी सागर में समस्त
विश्व की कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। वैकुंठ का मतलब है जहाँ पर कोई भी दुख ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, इससे थोड़ा सा और भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान इस भौतिक जगत में होते हैं तो जहाँ पर भगवान रहते हैं अर्थात द्वारिका या फिर वृंदावन या गोकुल, जो भी जहाँ पर होते हैं भगवान, वहाँ के जीवों को भी कष्ट मिलता है, है ना, दुख मिलता है। तो फिर वो कैसे होता है, जैसे द्वारिका में एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में एक बहुत बड़े असुर ने आक्रमण कर दिया। भगवान द्वारिका में रहते हैं लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े असुर ने यहाँ पर द्वारिका पे आक्रमण कर दिया और बहुत बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। और तब तक जब तक युद्ध चल रहा था तब सारे जो ये द्वारिका वासी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब ये युद्ध समाप्त होगा। बहुत उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान को कोई क्षति ना पहुंचे। उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दुखी अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वैकुंठ का मतलब तो यह होता है कि वहाँ पर कोई दुख ना हो, फिर भगवान के होते हुए वो दुखी क्यों हो रहे थे, है ना। भगवान भी थे, भले युद्ध चल रहा हो लेकिन भगवान थे, फिर उनको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर वो दुखी हुए हैं इसका मतलब है वो वैकुंठ कैसे हो सकता है, है ना। वहाँ के लोग तो सुखी होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो लीला करते हैं, लीला के द्वारा अपने भक्तों को, अपने जो उनके परम भक्त होते हैं उनको लीला में सहयोग देते हैं और फिर उस लीला के द्वारा उनको आनंद प्रदान करते हैं। फिर वो जो दुख भी होता है वो भी भगवान के सानिध्य के कारण आनंद में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वो दुख में भी वो भगवान के सानिध्य को अनुभव करते हैं, भगवान के प्रेम को अनुभव करते हैं, भगवान के संरक्षण को अनुभव करते हैं। भले ही भौतिक दृष्टि से वो दिख रहा है होता है कि ये दुख है, परंतु वो भी परम आनंद है। अगर उसमें आनंद नहीं होता तो उसका नाम वैकुंठ नहीं होता। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में थे तब जैसे ही भगवान वहाँ गोकुल में आए थे तब से रोज कंस एक बहुत सारे असुरों को भेजता था। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान क्या करते थे, एक दिन में मतलब कंपल्सरी होता था एक या दो असुरों को मारते थे। जैसे सुबह आते थे गौचारण करने के लिए और एक लंच से पहले एक असुर को और लंच के बाद दूसरे असुर को मारते थे। यानी कि बहुत सारे असुरों को भगवान ने आते ही मारना शुरू कर दिया। और जितने भी यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भागवत महापुराण में इतने ज्यादा असुरों के विषय में नहीं लिखा गया। वास्तव में जो भागवत महापुराण है वो 1 करोड़ श्लोकों का बना हुआ है। हमारे पास तो इसके केवल 18,000 श्लोक है लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवतम 1 करोड़ श्लोकों का है। तो भगवान ने देखा ये बेचारे भक्त कलयुग के प्रायण अल्प आयुष्य, इतनी छोटी उनकी आयु है, ये इतना छोटा सा ग्रंथ जो है भागवतम का 18,000 श्लोकों का वो भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो फिर इतना बड़ा यदि विशद उनको दिया जाएगा तो फिर वो तो कभी खोल के भी नहीं देखेंगे। अभी हम लोगों की आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है और हम भागवतम के पहले स्कंद पे ही होते हैं, आगे पढ़ नहीं सकते। कुछ लोग ने तो अभी तक पहला भी नहीं पढ़ा होगा। तो भगवान ने सोचा कि इसको छोटा करके बताता हूँ, जो ज्यादा रसमयी लीलाएं है ना केवल वही यहाँ पर वेद व्यास जी ने हमें बताई है। वैसे तो भगवान की सारी लीलाएं बहुत ही आनंदमयी है, परंतु हमारे पास जो भागवतम है उसमें थोड़ा सा, जैसे वास्तविक जो चतुश्लोकी भागवतम को जो विस्तार किया गया तो बहुत ही वृद्ध विशाल ग्रंथ बन गया था। तो इसको ही हमें संक्षिप्त में बताया है क्योंकि परीक्षित महाराज के पास समय भी बहुत कम था, 7 दिन थे सिर्फ, और 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी को उनको बताना था। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी लीला बताऊं। जब भगवान काल्य दमन करने के लिए यमुना के अंदर गए थे,
आप सबको याद है जब भगवान कालिया को दमन करने के लिए यमुना के अंदर गए थे, उस समय यमुना की स्थिति क्या थी? यमुना का पानी विषैला हो गया था और इतना ज्यादा विषैला हो गया था कि ना केवल उस पानी को जो पीता था केवल वही नहीं, बल्कि वो पंछी जो उस यमुना के ऊपर से गुजरते थे वो पंछी भी मर जाते थे। इतना विषैला जो नागराज कालिया उसके अंदर था, उसके अंदर इतना विष इतना तेज था कि केवल उसकी जो उसका प्रभाव जो था वो इतना विषैला था कि उससे भी मर जाते थे सब। अभी उससे पहले भगवान जितने भी असुरों को मारते थे, जो भी असुर आता था तो ऐसा नहीं होता था कि ना जो जितने भी गोकुलवासी थे वो सोचते थे भाई हाँ ठीक है कृष्ण है ना वो असुर को मार डालेगा और फिर हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम लोग आराम से सो जाते। नहीं, जो भी असुर आता था जब भी भगवान उसको मारते थे तो फिर वो सारे डरने लगते थे, चीखने लगते थे कितना बड़ा भयानक असुर है ये है वो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। तो ये दुख कैसा है? उनको पता होता था वो वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं होते थे, उनको पता होता था कि भगवान अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन भगवान की माया उन्हें भुला देती थी कि वो भगवान है। इसलिए वो भगवान को भगवान, क्योंकि यदि वो भगवान को भगवान समझने लगते तो फिर लीला का इतना आनंद नहीं उठा सकते, है ना? लीला का आनंद तभी उठाते थे जब वो कृष्ण को साधारण मानते थे, तभी तो वो कृष्ण से प्रेम करते थे। अगर यशोदा मैया भगवान को साधारण ना समझकर अगर बहुत बड़ा एक भगवान समझने लगती तो फिर थोड़े ना उसको रस्सी से बांधती, थोड़ी ना उसको लकुटी से डराती, वो तो सारा दिन भगवान की सेवा करती थी, अगरबत्ती जलाती थी और उसको भोग लगाती थी, पर्दा बंद करके उसको बिठा देती थी। नहीं, वो तो उनको साधारण समझती थी अपने बालक की तरह, कभी डांटती थी और उनको समझाती थी देखो कृष्णा अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो सब लोग कितना सोचेंगे कि कितना बेड मिनर्स है और तुम्हें कोई लड़की भी नहीं देखा, ऐसे जैसे हम अपने बच्चों को कैसे समझाते कि दुनिया वाले क्या कहेंगे देखो ये कितना गंदा है अच्छा भी नहीं, तो तुम अच्छे बनो। इसलिए भगवान को अच्छा बनने के लिए रोजाना यशोदा में आधे घंटे का लेक्चर देती थी उसको कि तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए, तुमको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, देखो तुम अभी तुम बड़े हो गए हो ना कृष्णा ऐसे नहीं। तो अगर भगवान को भगवान समझते तो ये वात्सल्य रस क्या संभव था, तो ये जो भगवान की माया है वो सब भुला देती थी। और इनको ऐसा लगता था कि कृष्ण जो है उसके अंदर कुछ ऐसा पावर है कि जो भगवान नारायण है ना वो हर बात में इसकी सहायता करते हैं, है ना? जो भी असुर आता है तो कृष्ण उसके साथ युद्ध करते हैं और नारायण भगवान इसकी सहायता करते हैं, इसके कारण असुर मर जाता है। कृष्णा वास्तव में कुछ नहीं है, बस भगवान की सहायता है, भगवान जैसे बोलते हैं इसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है इसलिए वो कर सकता है। भगवान है ऐसा तो वो सोचना भी नहीं चाहते थे कि ये भगवान है, बस भगवान की इसके ऊपर कृपा है इसलिए ये हमेशा विजयी होता है। तो जब भी भगवान यमुना जल में गए तब एक बार क्या हुआ, कालियानाथ ने भगवान को अपने दुम में लपेट के यमुना से बाहर दिखाया सबको। सबको भगवान ने दिखाया, सॉरी कालिया ने दिखाया, देखो तुम्हारा कृष्ण जिसको तुम सोच रहे थे कि इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, अब मैं इसका क्या हाल कर रहा हूँ। जब सारे ब्रजवासियों ने ऐसे देखा भगवान को, कृष्ण को वैसे कि उसने घेर लिया है कालिया ने, तो फिर सब लोग भयभीत हो गए, वो रोने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि आज तक तो भगवान ने उसकी उसके ऊपर कृपा की, परंतु अब भगवान नारायण ने इस बार उनकी उसकी सहायता नहीं की। और बहुत समय तक जब भगवान नहीं आए बाहर, तब वो सारे जितने भी ब्रजवासी थे उनको ऐसा लगा कि शायद कृष्ण की मृत्यु हो गई है। तो फिर उन सब ने सोचा कि अब क्योंकि कृष्ण हमारे प्राण हैं और कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के हृदय प्राण है, और हृदय की धड़कन है, यदि धड़कन ही नहीं तो हृदय कैसे धड़कता, और जब हृदय ही नहीं धड़केगा, जब जान ही नहीं होगी तो कैसे जिएगा कोई। तो सबने ये सोचा कि चलो हम सब भी यमुना में कूद कर मर जाते हैं, इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं वो सब। अब यहाँ पर हम वैकुंठ की चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ पर भगवान होते हैं वो तो वैकुंठ होता है, फिर ब्रजवासियों को इतना बड़ा इतना महान कष्ट क्यों हो रहा है। भगवान है उनके साथ तो उनको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना दुख हुआ कि सारे ब्रजवासियों ने ये निश्चय कर लिया कि अब हम सब यमुना जी में कूद कर मर जाएंगे। उस समय केवल बलदाव जी ही कह रहे थे, नहीं नहीं कन्नू को कुछ नहीं होगा, वो अभी वापस आ जाएगा, आप देखना वो कालिया को मारकर अभी वापस आएगा। लेकिन वो सब समझ ही नहीं रहते, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो बलराम जी को भगवान के विषय में पता। लेकिन बाकी सब ब्रजवासियों को भगवान की माया ने, योग माया ने ढक दिया, जिसके कारण उनकी उनको ये ज्ञान नहीं हो रहा था कि भगवान को बला कालिया कैसे मार सकता है। ऐसे वो लोगों को बहुत दुखी दुख हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद जब कालिया जो है ना, उसको कालिया को भगवान ने परास्त कर लिया, भगवान के नन्हे नन्हे चरण थे वो कालिया को मार रहा था, कालिया के फन पर ऐसे लगाता था, तो ऐसा लग रहा था कालिया को कि मेरे फन पर शायद कोई बहुत बड़ा पर्वत मार दिया, इतना उसको दुख हो रहा था। और इतना सारे उसके जितने अनंत फण थे और सारे फण जो है वो लहूलहान हो गए थे। और उसके बाद भगवान की शरण में आया कालिया और भगवान को कहा कि अब मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कालिया को मारा नहीं, बोला तुम आ गए हो मेरी शरण में, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो बोला मैं मुझे आज्ञा करो। बोला कृष्ण ने कहा अब मुझे बाहर लेके चलो कालिया, ताकि जो सारे ब्रजवासी मेरे वियोग के कारण इतने दुखी हो गए हैं वो देखें तो सही कि मैं सुरक्षित हूँ। तो जब भगवान बाहर गए, फिर भगवान ने बहुत आनंद से नृत्य किया। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि उस समय जब भगवान जल के अंदर थे, तब वो सारे ब्रजवासी इतने ज्यादा दुखी थे कि वो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार थे। तो इतना दुख उनको क्यों हो रहा था जब वो वैकुंठ में रह रहे थे। वैकुंठ की परिभाषा ये है कि जहां पर कोई दुख ना हो। तो इसका उत्तर यह है कि ये इस दुख में भी सुख है, इसमें विरह भाव का सुख है, कि ये हमारी साधारण बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। दुख जो केवल कृष्ण के वियोग का होता है ना, वो दुख वास्तव में आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, और ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो उनका एक ही दुख होता है कि वो भगवान से जब एक क्षण के लिए भी दूर होते हैं, जब भगवान से उनको दूर कर दिया जाता है तो उनके लिए ये जीवन नीरस हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुख है कि हम भगवान के ना होने पर दुखी हों। ये जीव का सबसे बड़ा कल्याणकारी है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि भगवान से बिछड़कर आप दुखी हो। अगर भगवान से बिछड़कर आप दुखी हो रहे हो तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान का विछोह, भगवान का विरह आपको दुखी कर रहा है। ये सबसे बड़ा सुख है वास्तव में। तो भले ही उस समय सब गोकुलवासी दुखी थे, परंतु वो उनका परम आनंद था क्योंकि वो भगवान के लिए दुखी थे। और इसी विरह भाव का आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। वो देखना चाहते थे कि जब भक्त से भगवान दूर होते हैं तो उसका विरह भाव कैसा होता है, उस विरह में उसको कैसा आनंद आता है। तो भले ही जब भगवान के साथ जीव होता है, भगवान का सानिध्य होता है, तो भौतिक दृष्टि से भले हमें दुख दिख रहा होता है, लेकिन वो वास्तव में आध्यात्मिक आनंद होता है। और जिस आनंद में हम भगवान का और भी ज्यादा संरक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, भगवान के साथ और भी ज्यादा तन्मयता होती है, और भी ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं, जब अगर वो नहीं है तो मैं भी उसके पास ही जाऊं। उसके अतिरिक्त उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, केवल कृष्ण की ओर ही उसकी दृष्टि होती है, तो उसमें उसको बहुत आनंद, एक विरह का आनंद होता है। जैसा कि गोपियां इतने समय तक, जब भगवान छोटे थे 12 साल के, तब मथुरा चले गए, और फिर 100 साल तक कभी भी गोपियों ने भगवान के साथ मिले नहीं। हालांकि मथुरा और वृंदावन का इतना ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन कभी भी मिले नहीं, तो वो विरह का आनंद था जिसमें वो भगवान से दूर रहकर भी भगवान के साथ थे। तो इसका अर्थ कहने का ये है कि जहाँ भगवान के साथ भक्तों का सानिध्य होता है वो वैकुंठ ही होता है, वहां पर कोई कुंठ नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने द्वारिका की तुलना वैकुंठ से की है। क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषी कहा इव, कि जो द्वारिका वासी हैं वो वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठाते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। हरि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि हमें अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करूं, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।